नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस से बातचीत की। कहा, भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। IIT कानपुर ने JEE एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी किया। 360 में से 332 अंक लेकर रजित गुप्ता ने परीक्षा में टॉप किया। IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। हमास ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा युद्ध विराम समझौते पर अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और मुक्केबाज में भारत ने थाईलैंड ओपन में 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि दोनों देशों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ है।
मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
राष्ट्रपति सैंटियागो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने उनसे भेंट की और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए श्री पालासियोस की सकारात्मक भावनाओं और मार्गदर्शन की सराहना की। राष्ट्रपति सैंटियागो बुधवार को स्वदेश लौटने से पहले मुंबई भी जाएंगे और वे वहां महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों, व्यापार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और तकनीकी कर्मियों से भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक कल शुरू हुई और मंगलवार को सम्पन्न होगी। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये का संदेश देने के लिए सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों के कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रचार कर रहे हैं। NCP SCP की सांसद सुप्रिया सुले ने के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल अपनी इथियोपिया की यात्रा को संपन्न किया। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत सिंडे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। श्री सिंडे ने कहा है कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसार कर रहा है। आज इस कड़ी में परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना के दिशा निर्देश की अधिसूचना जारी की है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि भारत कम आयात कर की पेशकश कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 जून को नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे की अंतिम 76 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसे समृद्ध मार्ग के नाम से जाना जाता है। नासिक के इगतपुरी को थाने के आमने से सामने जोड़ने वाला ये अंतिम चरण नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के पूरे होने का प्रतीक है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के बराबर बनाने के लिए विधानसभा के नियमों और कार्य प्रणालियों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा है कि सदन की कार्यवाही में और पारदर्शिता लाने तथा विसंगतियों को दूर करने के लिए दिल्ली विधानसभा की नियम पुस्तिका में सदन के दोनों सदनों की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का समावेशन किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कारपून ने आज जेईई एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र छात्राएं वेबसाइट result25.jeeadvance.ac.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में विशेष प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले रजित गुप्ता ने अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि तैयारी के दौरान जब भी आवश्यकता हो तो अपने शिक्षकों की सलाह लें और पूरी लगन के साथ तैयारी करें। जेईई एडवांस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाले सक्षम जिंदल ने बताया है कि उनकी नज़र पहले से ही शीर्ष 10 परीक्षार्थियों में आने पर थी और वो अपने परिणाम से बेहद खुश हैं। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और राज्य में आर्थिक तथा तकनीकी विकास का जीवंत और आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में पूर्व और मध्य भारत में मूसलाधार बारिश और अगले 7 दिनों में इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, शी योमी, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, लोहित और चांगलांग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, कामले, सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, नामसाई, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम में कल शाम चट्टन इलाके में भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई। भूस्खलन की वजह से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि कुछ अन्य लोग भी अभी लापता है और बचाव अभियान जारी है। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच लाचुंग से 1,678 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। 18 पर्यटक वाहनों के साथ पहला जत्था आज लोअर दोजुंग के फिदांग पहुंचा। 29 मई को बादल फटने और लगातार मूसलाधार बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम में स्थिति विकराल हो गई थी और बहुत से पर्यटक वहां फंस गए थे। हमास ने गाजा संघर्ष विराम समझौते पर नई परोक्ष वार्ता तत्काल शुरू करने के प्रति अपनी इच्छा की घोषणा की है। ये घोषणा हमास ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका के दूत स्टीव वाटकॉफ के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के बाद जारी की, जिसमें अमेरिका ने पूरी तरह से अस्वीकार बताकर खारिज कर दिया था। देश भर में कोविड-19 के 3,960 से अधिक सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य कल्याण एवं मंत्रालय के अनुसार केरल में सबसे अधिक 1,435 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 506 और दिल्ली में 483 मामले दर्ज की गई है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर राममोहन लोहिया अस्पताल में कोविड यूनिट के प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने कहा है कि अस्पताल कोविड मरीजों के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 4th संस्करण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। दीपक और नमन तनवर ने कल 2 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।